हमारी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्यवचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्यवचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी श्रोता भाई बहनों व मित्रों को सत्य वचन टीम की ओर से हमारा हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा है आप प्रभु के अनुग्रह से कुशल हैं और आज के इस सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 32 और 33वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनो की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपकी संगति में बैठकर आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन या मित्र किसी संकट में है, क्लेश में है, किसी गंभीर रोग से पीड़ित है या अपने जीवन में अशांत है, निराश है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हां तो मित्र, आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इन दिनों हम पुराने नियम से गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 32वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। 32वें अध्याय का शीर्षक है रूबेन तथा गाद यर्दन नदी की गलत दिशा में भूमि की मांग करते हैं। मित्रों, यह अध्याय हमें आधे मन अर्थात बेमन वाले गोत्र के विषय में बताता है। रूबेन, गाद तथा मनश्शे के आधे गोत्र ने यर्दन नदी की दूसरी ओर अर्थात गलत दिशा में भूमि की मांग की। मित्रों, इस घटना में हमारे लिए अद्भुत आत्मिक संदेश है। इस घटना का हमारे जीवन में एक अद्भुत आत्मिक उपयोग है। यहां हम यर्दन नदी को मसीह यीशु की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार इसराइली यर्दन नदी के गर्भ में जाते हैं और पुनः बाहर आते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रवेश मसीह कब्र के गर्भ में गए और तीसरे दिन पुनः कब्र से जीवित बाहर आ गए। आज एक पापी जन जब विश्वास द्वारा मसीह की मृत्यु में सम्मिलित होता है और पाप के लिए मर जाता है और विश्वास द्वारा उनके पुनरुत्थान में सम्मिलित होकर धार्मिकता के लिए जीवित रहता है। मित्रों, हमें सदा जीवित रहने के लिए मरना आवश्यक है। हमें पाप के लिए मरना होता है, तभी हम धार्मिकता के लिए जीवित रह सकते हैं। स्वाये इसी परिचय के साथ हम गिनती के 32वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ देखें 1-5 पदों को, जहां इस प्रकार से लिखा है, रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से पालतू पशु थे। अतः जब उन्होंने याजेर और गिलाद के देशों को देखा कि वे पशुओं के लिए सचमुच उपयुक्त हैं, तो गादियों और रूबेनियों ने मूसा और एलियाजर याजक तथा मंडलियों के अगुओं के पास आकर कहा, अतारूत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इसराइली मंडली को विजय दिलाई है वो पशुओं के लिए उपयुक्त है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह हम पर हो तो ये देश तेरे दासों को निज भूमि होने के लिए दे दिया जाए, हमें यर्दन पार ना ले चल। मित्रों, यहां हम देखते हैं कि ये लोग किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। यहां वास्तव में हम ऐसे लोगों का चित्र देख रहे हैं जिनके लिए आत्मिक बातों की अपेक्षा शारीरिक बातों का मूल्य अधिक है। वे कभी भी सत्य का सौदा कर लेते हैं। वे कभी भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए सत्य को बेच सकते हैं। आज कितने मसीही युवा और युवती हैं जो अविश्वासियों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर स्वेच्छा से असमान जुए में जुत जाते हैं और जैसे जैसे प्रेम प्रेत उतरता जाता है उनका जीवन निराशा और दुख से गिरता जाता है। परमेश्वर का सत्य वचन बताता है कि सत्य को मोल ले लो, उसे ना बेचो, क्योंकि सत्य स्थाई है, अमर है। सत्य प्रभु यीशु मसीह है और सत्य ही परमेश्वर है। मित्रों, यही रूबेन और गाद के गोत्र के मन में आत्मिक बातों की अपेक्षा शारीरिक लाभ का स्थान अधिक था। वे यर्दन की दूसरी अर्थात गलत दिशा में अपने लिए देशों की मांग करते हैं, जैसा कि हमने प्रथम पद में पढ़ा। इनकी ऐसी गलत मूर्खतापूर्ण मांग से प्रभु के सेवक मूसा अत्यंत व्याकुल व क्षुब्ध हैं और तब वह उनसे इस प्रकार से कहते हैं, छठे और सातवें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहां बैठे रहोगे? तुम इसराइलियों को पार होकर उस देश में जाने से क्यों निरुत्साहित कर रहे हो जिसे यहोवा ने उन्हें दिया है? मित्रों, प्रभु के दास मूसा 40 वर्ष पुराने अनुभव को स्मरण कर व्याकुल हो जाते हैं। वे स्मरण करते हैं कि किस प्रकार 40 वर्ष पूर्व 10 जासूसों ने अपनी निराशाजनक सूचना द्वारा समस्त इसराइल प्रजा को निरुत्साहित किया था। परिणाम स्वरूप प्रजा ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और कुड़कुड़ाए और तब किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष जंगल में भटकाया और उनको वहीं जंगल में ढेर कर दिया। तब आठवें और नवें पदों में लिखा है, मूसा कहते हैं, जब मैंने तुम्हारे परमेश्वर पूर्वजों को कादेश बरने से उस देश को देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि जब उन्होंने एशकोल की घाटी तक जाकर उस देश को देखा तो उन्होंने इसराइलियों को निरुत्साहित कर दिया जिससे वे उस देश में नहीं गए जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था। मित्रों, स्मरण रहे, ये नई पीढ़ी है। मूसा नई पीढ़ी को संबोधित कर रहे हैं। उस कटु अनुभव को स्मरण करने के लिए अभी वे बहुत छोटे हैं और इसलिए मूसा उनके समक्ष उस अनुभव का चित्रण कर रहे हैं। और तब दसवें पद से आगे देखें, और इसलिए परमेश्वर का कोप उस दिन उन पर भड़क उठा और उसने ये शपथ खाई कि 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने मनुष्य मिस्र से निकले उनमें से एक भी उस देश को ना देखने पाएगा जिसे देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं चले। केवल यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू उसे देखेंगे, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। और तेरहवें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का और उसने उन्हें जंगल में 40 वर्ष तक भटकाया जब तक कि उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत ना हो गया जिन्होंने परमेश्वर अर्थात यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। मित्रों, प्रभु के सेवक मूसा को डर है कि कहीं ये नई पीढ़ी भी अपने पूर्वजों के समान उस असफलता को ना दोहराए। और तब 14 और 15 पदों में लिखा है, अब देखो तुम उन पापी मनुष्यों की संतान होकर अपने पूर्वजों के स्थान पर उठ खड़े हुए हो कि इसराइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए क्रोध को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर उन्हें जंगल में छोड़ देगा और तुम इन सब लोगों का नाश करा दोगे। मित्रों, हम यहां प्रभु के सेवक मूसा के भय को भलीभांति समझ सकते हैं। उस भयानक जंगल में 40 वर्षों का कठोर जीवन तथा निरुत्साहित लोगों को झेलना, अर्थात उनके निरुत्साह को झेलने के पश्चात पुनः उसी अनुभव में जाना और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने में सफल हो जाना वास्तव में जोखिम भरा अनुभव होगा। और तब 16 से 19 पदों में प्रभु के सेवक कहते हैं, तब उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम यहीं अपने पशुओं के लिए बाड़े बनाएंगे और अपने बच्चों के लिए नगर बनाएंगे, परंतु हम इसराइलियों के आगे आगे हथियार धारण करके तब तक चलते रहेंगे जब तक कि उन्हें उनके नगर में न पहुंचा दें, जबकि हमारे बच्चे इस देश के निवासियों के कारण दृढ़गढ़ वाले नगरों में ही रहेंगे। जब तक कि हर एक इसराइली अपने अपने भाग का अधिकारी ना हो जाए तब तक हम अपने घरों को ना लौटेंगे, क्योंकि हम उनके साथ यर्दन पार व कहीं आगे अपना भाग ना लेंगे, क्योंकि हमें अपना भाग यर्दन के इसी पार पूर्व की ओर मिल चुका है। मित्रों, इस शर्त पर कि वे उस समय तक हथियार धारण करके साथ चलेंगे जब तक वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर लेते, प्रभु के दास ने उनको यर्दन की गलत दिशा ही में रहने की अनुमति दे दी। यहोशू की पुस्तक के 12 से 16 अध्यायों में हम देखेंगे कि उन्होंने न केवल सहमति जताई परंतु अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण भी किया। और तब हम 23वें पद में पढ़ते हैं जहां लिखा है, परंतु यदि तुम ऐसा ना करो तो देखो तुम यहोवा के सम्मुख पापी ठहरोगे और तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। प्रभु के सेवक मूसा ने इसका दूसरा पक्ष भी उन्हें दर्शा दिया और उन्हें चेतावनी दे दी। आज अनेक लोग हैं जो गंभीर पाप करते हैं किंतु मनुष्य द्वारा पकड़े नहीं जाते। पुलिस तथा कानून दोनों उन्हें पकड़ने और दोषी साबित करने में असमर्थ रहते हैं, परंतु यहां परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तुम पाप करोगे तो परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहरोगे और परमेश्वर इस पाप के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। और इसलिए प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री के 6 अध्याय के 7वें पद में चेतावनी देते हैं कि सावधान, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। मित्रों, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, आप कहां हैं और आप क्या करते हैं, और स्मरण रहे आपके पाप आपको ढूंढ निकालेंगे। दूसरे शब्दों में आपके पाप परमेश्वर द्वारा ढूंढ निकाले जाएंगे। और तब 33वें पद में लिखा है, इसलिए मूसा ने गादियों और रूबेनियों तथा यूसुफ के पुत्र मनश्शे के अर्ध गोत्र के लोगों को एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओक के राज अर्थात वह देश और आसपास की भूमि सहित उनके नगर और चारों ओर के देश के नगर दे दिए। प्रिय मित्रों, इन गोत्रों ने जिन्होंने यर्दन नदी की गलत दिशा में बसने का चुनाव किया उन्हें यर्दन नदी को पार करने का सुअवसर फिर कभी प्राप्त नहीं हुआ। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यर्दन नदी हमारी मृत्यु का प्रतीक नहीं है। जब हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे तब हम वहां देखेंगे कि यर्दन नदी हमें सिखाती है कि हमें कनान में किस प्रकार प्रवेश करना है। दूसरे शब्दों में आज प्रभु की संतान को बसने के लिए दो स्थान दिए गए हैं। आप इस जंगल रूपी संसार में बस सकते हैं और आत्मिक रूप से कंगाल बन सकते हैं, या फिर आप आत्मिक आशीषों के स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जिसका प्रतिनिधित्व यहां कनान देश कर रहा है। किंतु प्रश्न उठता है कि आप कनान देश में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। मित्रों, आप यर्दन नदी को पार कर आशीषों के देश में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब इसराइल की संतान पर आप दृष्टि करते हैं तो हम यहां दो महान सबक पाते हैं। वे पत्थर जो यर्दन नदी में डाले गए वे मसीह यीशु की मृत्यु के विषय में बताते हैं, और जो पत्थर यर्दन से बाहर निकाले गए वे मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बताते हैं। मित्रों, मैं और आप मसीह यीशु की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा आत्मिक आशीषें प्राप्त करते हैं। आज हमें ये जानना है कि हम मसीह के साथ गाड़े गए और उसके साथ जिलाए गए हैं, और तब वे आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम मसीह यीशु में बुलाए गए हैं। दाई गोत्रों ने यर्दन नदी को पार नहीं किया, क्या इससे कोई हानि उनको होगी? ये उनके लिए हानिकारक होगा? जी हां मित्र, ये उनके लिए हानिकारक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो एक बार वह भीड़ से बचते हुए झील की दूसरी ओर गिरासेनियों के देश में पहुंच गए, और जैसा कि मरकुस अपने पांचवें अध्याय के प्रथम पद में बताता है कि इसे गदारेनियों का देश भी कहा जाता है। मित्रों, ये गिरासेनी या गदारेनी कौन है? ये गाद के गोत्र ही हैं और यर्दन नदी की गलत दिशा में बस गए थे, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे तो उन्होंने इन लोगों को सुअर पालन का व्यवसाय करते देखा। ध्यान रहे, इसराइलियों में कुत्ता और सुअर घृणित पशुओं की श्रेणी में आते हैं। प्रभु जी वहां लोगों को दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त भी देखते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार के पांचवें अध्याय के 2-5 पदों में बताया गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया तो उस गांव के लोगों ने जानते हैं क्या किया? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू हमारे क्षेत्र से चला जा, क्योंकि इस मनुष्य की चंगाई की कीमत उन्हें अपने 2000 स्वरों से चुकानी पड़ी थी, और हमने देखा कि उन्हें वास्तव में मनुष्य से अधिक अपने स्वरों से प्रेम था। यह था यर्दन की गलत दिशा में बसने का परिणाम। उनका प्रेम आत्मिक बातों की अपेक्षा शारीरिक बातों से था। उनका आत्मिक स्तर बहुत निम्न हो चुका था। आत्मिक बातों का मूल्य उनके लिए समाप्त हो चुका था। मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हम ऐसा ही देखते हैं। जब परमेश्वर की संतान यर्दन को पार कर प्रतिज्ञा के देश में जाने से असफल हो जाती है, उसका आत्मिक स्तर भी ऐसा ही निम्न हो जाता है, और उसके जीवन से आत्मिक बातों का मूल्य समाप्त हो जाता है। वो शारीरिक बातों पर अपना मन लगाता है, और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है वो विनाश की ओर जाता है। सो इन्हीं बातों के साथ हम 32वें अध्याय को समाप्त करते हैं और 33वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। गिनती की पुस्तक के 33वें अध्याय का मुख्य विषय है यात्रा का अभिलेख। अध्याय 33 में हमारे समक्ष इसराइल की यात्रा का अभिलेख है। हम आपको बता चुके हैं कि कुछ घटनाओं के अतिरिक्त हमारे पास उन 40 वर्षों तक निर्जन प्रदेश में भटकने और वहां के अनुभव का कोई अभिलेख नहीं है, परंतु यहां उनकी यात्रा का अभिलेख, जहां जहां उन्होंने पड़ाव डाले उसका अभिलेख हमारे पास है। आइए हमारे साथ देखें 1-5 पदों को। इन पदों इस प्रकार से लिखा है, जब इसराइली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकल आए तब उन्होंने इन स्थानों पर पड़ाव डाले, और मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन स्थानों के नाम लिख लिए जहां जहां से उनकी यात्राएं प्रारंभ होती थीं। इन स्थानों के अनुसार उनकी यात्राएं इस प्रकार हैं, पहले महीने में 15वें दिन अर्थात फसे के दूसरे दिन सब इसराइलियों ने रामसेस से प्रस्थान किया, तब मिस्रियों के देखते देखते वे निधड़क उस समय निकल गए जब मिस्री अपने पहलौठों को जिन्हें यहोवा ने मारा था मिट्टी दे रहे थे। यहोवा ने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। तब इसराइलियों ने रामसेस से प्रस्थान कर सुक्कोत में डेरे डाले। मित्रों, इन पदों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि ये कोई उत्तेजित करने वाले पद नहीं है, मैं तो इन्हें उबाने वाले नीरस पद कह सकता हूं। हम तो ये जानने के इच्छुक हैं कि वहां यात्रा के समय क्या क्या घटनाएं घटी, परंतु यहां ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। यदि आपका कोई मित्र मुंबई की यात्रा करके आपके गांव लौटे और आपको केवल मार्ग के रेलवे स्टेशनों के विषय में ही बताने लगे, तो आपको ये बड़ा नीरस लगेगा, क्योंकि आप तो उसके अनुभवों को सुनना चाहते हैं कि वहां उसने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। तो इसलिए 33वें अध्याय के विषय में मेरा भी यही विचार है कि ये बहुत रुचिकर अध्याय नहीं है। फिर भी पवित्र शास्त्र के प्रत्येक खंड व अनुच्छेद में हमारे लिए महान आत्मिक संदेश है, और इसलिए इस अध्याय में भी हमारे लिए महान आत्मिक सबक है। यद्यपि ये अध्याय मात्र एक सड़क मानचित्र है, परंतु ये प्रकट करता है कि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों द्वारा उठाए गए प्रत्येक पग का अभिलेखा रखा है। वह निर्जन प्रदेश की सारी यात्रा भर पग पग पर उनके साथ रहा, उनके मध्य उपस्थित रहा। निसंदेह परमेश्वर उनके साथ था, परंतु संपूर्ण हृदय से वे परमेश्वर के साथ नहीं थे। उनके हृदय परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे, उनका हृदय परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही बना रहा। उनके हृदय में कुड़कुड़ाहट थी, परंतु परमेश्वर ने उन्हें ना तो कभी त्यागा और ना कभी निकाला। मित्रों, ये पवित्र बाइबल के महान सत्यों में से एक है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रियों से कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। परंतु कैसे? मित्रों, पवित्र आत्मा के भेजने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में आए हैं। पवित्र आत्मा मसीह यीशु के प्रत्येक विश्वासी के हृदय में निवास करता है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप उससे दूर नहीं जा सकते, वह आपको जाने ही नहीं देगा, वो मार्ग भर आपके साथ रहेगा। हम लड़खड़ा तो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर पिता हमको छोड़ेगा नहीं। हमें जिस प्रकार परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए, हम वैसे नहीं करते। परंतु मित्रों, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस यात्रा में वो हमारे साथ चलते हैं और पग पग का भी लेकर रखते हैं। मित्रों, यह अध्याय उन निर्देशों के साथ समाप्त होता है जो प्रभु के दास मूसा ने इसराइल को दिए, जबकि वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तब 33वें अध्याय के 51 से 56 पदों में हम निर्देशों के विषय में पढ़ते हैं। अब यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो उदारवादी विचारधारा के लोगों तथा यहूदी विरोधियों को पसंद नहीं है। जैसे कि यहां लिखा है, फिर यहोवा ने मोआब के मैदानों में यरीहो के सामने यर्दन नदी के तट पर मूसा से कहा, इसराइलियों से कहे, जब तुम यर्दन नदी पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को अपने सामने से उस देश से निकाल देना और उनके गड़े हुए पत्थरों और ढली हुई मूर्तियों को नाश कर देना और उनके ऊंचे स्थानों को ढा देना। वे कहते हैं कि इसराइल से ऐसा कहना परमेश्वर की क्रूरता और पक्षपात को दर्शाता है, जबकि इसराइल स्वयं भी अनाज्ञाकारी रहे हैं। आइए आप मेरे साथ इस पद को देखें, वचन संहिता 24 उसका प्रथम पद। यहां लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ प्रभु का है, जगत और वे सब भी जो उसमें रहते हैं। मित्रों, ये पृथ्वी परमेश्वर की है। क्या क्या करना है इसकी आज्ञा परमेश्वर पिता देते हैं। उसने इसराइल से कहा कि देश में प्रवेश करें और उनकी ढली हुई प्रतिमाओं को नाश कर दें। आज भूगर्भवेता इसकी खुदाई में लगे हुए हैं और ये प्रतिमा पूजकों के पूजा स्थल थे जहां घृणित कार्य होते थे। कनानियों का आत्मिक स्तर बड़ा निम्न था, अर्थात उनका पूर्ण पतन हो चुका था। न केवल वे प्रतिमा पूजक थे वरन वे जीवित और सच्चे परमेश्वर से बहुत दूर थे, परंतु स्वच्छंद संभोग तथा लैंगिक पाप उनके जीवन का ढंग बन गया था और यह उनकी उपासना में भी सम्मिलित था। परिणाम स्वरूप कनानी भयानक रोगों द्वारा चट कर दिए गए थे। आज हमारी वर्तमान आधुनिक समाज पाप की भयंकरता को कम करने के प्रयास में लगा हुआ है। पाप एक जानलेवा रोग है, ये एक महामारी है और अत्यंत खतरनाक है। करानी विश्व के विशाल जनसमूह के संपर्क में आए और उन्होंने इन घृणित बीमारियों को हर जगह फैला दिया, इसलिए परमेश्वर इस किराएदार को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे किराएदार को रखने जा रहा है। अब आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। मित्रों, वास्तव में परमेश्वर का यह व्यवहार दया व करुणा का व्यवहार था। परमेश्वर ने कनान को आने वाली पीढ़ी के कारण नाश किया, क्योंकि कनान के नाश के द्वारा वो आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहता था, और इसी कारण से परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजा, क्योंकि परमेश्वर आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा था। मेरे मित्रों, परमेश्वर की आलोचना ना करें, उस पर दोष ना लगाएं। विश्व शांति तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक शांति का राजकुमार नहीं आएगा, और तब तक परमेश्वर एक देश के द्वारा दूसरे देश को दंडित करता ही रहेगा। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और अपने वचन की रक्षा करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।